हम सभी की ओर से आदरणीय कानन दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। हम सभी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय दीदी जी का लौकिक जन्म गाजियाबाद में 1954 में हुआ और आपका ये परम सौभाग्य रहा, आप बाल्यकाल में ही अपने माता पिता के साथ साकार बाबा से मिलन मनाने का सौभाग्य मिला मेजर की कोठी में, और पूरा परिवार सहित ईश्वरीय सेवा में यज्ञ स्नेही होकर चलते रहे। 1970 में आपने ईश्वरीय जीवन समर्पित रूप से सेवाओं को दे रहे हैं। शुरुआत में आपने आसाम, मणिपुर, बांग्लादेश, भूटान आदि ईस्टर्न के अनेक स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1970 से आप कोलकाता म्यूजियम आशुतोष मुखर्जी रोड के अंतर्गत अपनी बहुत मूल्यवान सेवाएं देते हुए अनेक सेवा केंद्रों का निर्माण कर लाखों आत्माओं को परमात्मा मिलन का अनुभव कराते रहे। 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं आपकी इस ईश्वरीय यात्रा का, और बहुत बहुत तपस्वी और त्यागी और सेवा में आपने अपना हर श्वास और संकल्प सफल कर रहे हैं। आपको ब्रह्मा बाबा की साथ साथ आपको ये भी सौभाग्य रहा कि ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री दादी निर्मल शांता जी के भी आप बहुत संग में रहने का आपको सौभाग्य मिला, उनसे बहुत कुछ आपने सीखा, और साथ साथ आपने न केवल भारत में परंतु ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्रिटेन, स्वीडन आदि अनेक देशों में भी भ्रमण कर ईश्वरीय संदेश प्राप्त कराया। आप सरलता, मधुरता, अंतर्मुखता आदि अनेक गुणों से पूर्ण अनेक आत्माओं को रूहानी बल भरने वाली विशेष आत्मा है। तो ऐसे आदरणीय कानन दीदी जी से हम आज सुनेंगे, आपका विषय है अनुभवों की अथॉरिटी। आदरणीय कानन दीदी जी,
ओम शांति। आप सभी होली हंस बाबा के राजयोगी ईश्वरीय परिवार के बच्चे, हम भी उसी में एक सदस्य हैं, कोई विशेष नहीं, लेकिन फिर भी आज मुझे साकार बाबा व दीदी दादियों कहें तो सभी से ही देखने का, पालना का और विशेष उनके साथ रहने का, किसी के साथ बहुत ज़्यादा, किसी के साथ कम, अवसर प्राप्त हुआ। उन विशेष वदानी मुरत दादियों के साथ रहते रहते जो कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने बाबा के घर में आकर हमें सब कुछ कहीं सिखा ही दिया सहज रूप से। तो आज विशेष रूप से आप सबको ये बाबा की पालना, पहले साकार बाबा की पालना हमने बचपन से ही ली, विशेष तो पाठ हमारे लौकिक मदर फादर के आधार से, दिल्ली से साकार बाबा से मिले, वे फादर ट्रांसफर में आए, जयपुर में रहे, तब साकार बाबा से मिलना हुआ। तो बाबा का प्यार, थे छोटे 8-1 साल के, और भी बहन भाई थे, लेकिन ये अनुभव होता है कि साकार रूप में भी माँ बाप बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बाबा का क्या अलौकिक प्यार था वो मैं नहीं जानती, ना समझते थे, लेकिन बाबा के बोल में वो प्यार और शक्ति थी, जो बाबा बोलते थे वो करने का लक्ष्य आ जाता था। उस उम्र में जब जिन्होंने देखा है हिस्ट्री हॉल जहाँ पहले गुलजार दादी रहती थी, हम लोग वहीं रूम में रहते थे, और बाबा ने बहुत सारे बच्चों को खिलौने भेज दिए। एक दिन हम सब बच्चे उस खिलौने में जब बिजी हो गए तो बाबा ने, वो सब तितलियाँ का है, बाबा बच्चे नहीं बोलते, तो लच्छू बहन ने कहा नहीं बाबा वो सब खेलने में है, बाबा के बच्चों को बुलाओ। जैसे बाबा का इतना कहना और हम सब दौड़ के क्लास में आते थे, तो बाबा यही कहते पढ़ने के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है। दो ही महावाक्य हैं, लेकिन वही वैदानी बातें याद आती हैं। पढ़ाई भी ठीक से करनी है और पढ़ाई भी ठीक से कर, लौकिक अलौकिक। उसी पालना से हम लोग जयपुर में रहते थे, तो बाबा जी बच्चे राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़ेगी, अब प्रजा बनानी है तो सेवा करनी है, पार्टियों को समझाना है। तो जयपुर में पहला पहला म्यूजियम खुला था, तो उसमें आनंद किशोर दादा होते थे और कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको एक स्लिप मिलती थी, वो किस तो, मतलब कैटेगरी में बच्चे समझाएं, बड़े समझाएं, वीआईपी है कौन है, वो स्लिप देते थे बीच में नाइट फ्लोर में, तब उसको पार्टी समझाने दी जाती थी। हम लोग सोचते थे बाबा ने कहा प्रजा बनानी है तो हम कैसे पार्ट, हमको तो पार्टी मिलेगी नहीं, तो हम नीचे जाके सब बच्चों को ही क्या करते थे, पर्चे बांट के आते थे, और जब बच्चे ऊपर आएंगे तो पार्टी किसको मिलेगी, हम लोगों को मिलेगी। तो बाबा का ये कहना कि पार्टी समझाना, प्रजा बनाना तो राजा बनेंगे, अब ना राजा बनने का ज्ञान था ना प्रजा बनने का ज्ञान था, लेकिन बाबा के बोल के अंदर वरदानी बोलती है, उस रूप से शुरू की पालना की है। और विनाश का भी पाठ था, बाबा के देव विनाश हो जाएगा, तो ये भी याद है अंदर हमारे घर में 4 बजे से ही सुबह ग्रामोफोन बाबा ने फर्स्ट में गिफ्ट दिया था, चित्र वगैरह सब, तो 4 बजे से योग होता था। और ये कुछ पालना का पार्ट था, बड़ा मेज सेंटर भी उसी समय फादर ने बनवाया, बैंक में थे तो घर भी बहुत बड़ा था, तो सब दीदी दादियों को बाबा घर में भेजते थे, तो सबकी पालना हमको कोई ज्ञान से ही नहीं केवल मिली, उन लोगों के जीवन को देखकर अंदर में प्रेरणाएं मिली। तो अनुभव क्या कहता है, जो भी लौकिक में सब परिवार है, चाहे कोई लौकिक संसार में है, लेकिन सबने दीदी दादियों की पालना कैसे ली, व्यवहार से। तो मेरा कहने का भाव है कि जब हमारी प्रकाशमणि दादी सब टीचर्स से मिलती थी, तो सब टीचर्स को बोलती थी आपकी पढ़ाई के क्या सब्जेक्ट्स हैं, हम सभी यही कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा। दादी कहती नहीं, सबसे बड़ा हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आप भी सोच सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो दादी कहती सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपका व्यवहार, ज्ञान भी सुनाओगे अच्छे से नहीं सुनाओगे, योग कितना भी करोगे कोई नहीं देखेगा, आपकी अंदर की धारणाएं भी नहीं, व्यवहार कैसे सबसे करते हो। तो दादियों ने हमको अपने लौकिक संसार में रहते हुए हमारे परिवार को अपना जो व्यवहार दिखाया, पारिवारिक व्यवहार, उस व्यवहार से हम सबके अंदर अलौकिक शक्ति आई। ज्ञान में चलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके जीवन को देखकर हमको याद है, जब मधुबन भी आते थे पार्टियां लेकर, चकदाई बहन दीदी के साथ, गुजार दादी के साथ, सबके साथ सफर किया हमने, गुलजार दादी के साथ दिल्ली से माउंट आबू आते थे, रास्ते में सफर करते थे, तो आपको हंसी की छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तब तक कितनी एकानामी इकोनॉमी से चलती थी, पास में बैठे हैं कोई प्लास्टिक में लेके कोई चीज डाल के खा रहे, तो उसको वो फेंकती नहीं थी, हम लोग देखते रहते थे कागज प्लास्टिक हो उसको साफ करके लपेट के रखते, बोले एकानामी से चलना है ना फिर काम आएगा, है बहुत छोटी बात। आज भी हम लोगों को संस्कार में आता नहीं कि कितना भी यज्ञ में बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन सब दीदी दादियों को आज से 50 साल पहले तक बहुत एकानामी वेस्टेज नहीं देखी, आज भी नहीं देखा। तो ये तो छोटा सा अनुभव है। फिर मेरे को मन में आता था शुरू से, जब समर्पण हो गए कलकत्ता में, परदादी के पास आए, निर्मल शांता दीदी के पास, रामानुसार पाठ कुछ ऐसा रहा, भले 21 साल की एज थी, हर मीटिंग में मुझे मधुबन आना होता था, मीटिंग में सब मेरे से आयु में बड़े थे, अब मीटिंग में आने के बाद भी ऐसा भी होता था कई बार टिकट भी नहीं मिलते थे, कभी 3 टाइम में, कभी क्लास उसमें ट्रेन में सफर ही नहीं किया था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो मीटिंग में भी जरूर जाना है, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से आबू रोड, हम सोचा कैसे जाएंगे, बद दिल्ली तक तो पहुंच गए। तो बाबा हमेशा मुरली में कहता है बाप टीचर सदगुरु के संबंध से मुझे याद करो, फिर मामा की मुरली में आता है साजन सजनी के रूप से याद करो, ठीक है। तो निर्मल शांता दीदी को हम कहते थे कि बाप का संबंध ठीक है, टीचर भी कभी पढ़ा के चला जाएगा, गुरु की तो भावना ही नहीं थी, कोई किया भी नहीं और भावना भी नहीं, लेकिन साजन सजनी का संबंध अच्छा नहीं, वो लड़ाई झगड़े वाला है, हर एक की कहानियां आपको यही सुनने को मिलती है। तो हंसते थे, ये संबंध किस लिए बाबा बोलता है, बोलते ना अभी भी साकर्मण, तो बाप बच्चे ठीक है। तो एक मैंने पूछा बाप बच्चे का कैसे संबंध ठीक है और संबंध क्यों नहीं, मतलब कुछ भी बच्चा चाहे गलती करे तभी माँ बाप क्या करते हैं, प्यार दे के उसको संभाल लेते हैं, कुछ भी हालत में हर संबंध में बाप बच्चों को, क्योंकि हमारे फादर ऐसे ही थे, देखा भी था। लेकिन ये साजन संजनी वाला संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और मैं माउंट आबू जाना था, उस समय 22-23 साल की एज होगी, आरएसी का टिकट मिला, अकेले थे, आरएसी की भी नॉलेज नहीं थी, ये अनुभव का बड़ा सूक्ष्म मुझे हमेशा याद रहता है। ट्रेन में बैठा दिया फादर ने, इधर भी भाई इधर भी भाई, चारों तरफ देखती हूँ क्या सब बैठे हुए हैं, आरएसी में रिजर्वेशन कैंसिल के बाद मिलता होगा। मम्मी को बाबा के घर में आए बिना फ्रूट की पेटी के हम आ नहीं सकते थे, चाहे उठे नहीं उठे वो भी दे आ गई। पर उस दिन का जो अनुभव किया, जो सबको करना, कभी बाबा ही कराता है कभी हम अपने संकल्प से करते हैं, तुरंत सबको बैठ के देखते, मेरे आंख बंद करके पलाठी मार के बैठ गए। अच्छा अगर बाबा मेरा साजन है तो क्या वो मुझे ऐसे ट्रेन में बैठा के ले जाएगा। मैं अपने मन से एकदम मन से निकला, इतना ही बोलना था, अचानक एक टीटी आके कहते आपकी टिकट क्या है, फिर एक माता कहती यहाँ पर, मुझे एक नहीं तीन जगह मुझे सीट पूरी मिल गई। तो मैंने कहा बाबा को अब मुझे यही संबंध का संकल्प मैंने नहीं किया, पर क्या ऐसे थोड़ी ले जाते हैं, क्यों। अब कई बहुत सारे मेरे ऐसे ही अनुभव हैं, ये बहुत नया अनुभव था, ठीक है। उसी संबंध से हमने कहा बाबा को कुछ राज होगा इसमें भी, तो ठीक है बाबा ने कराया। तो ये अनुभव की बातें क्या याद रहती हैं, किस लिए मैं ये सुना रही हूं कि बाबा जो भी महावाक्य है, जो भी महावाक्य मुरली में कहते हैं या सुनाते हैं, उसको उस समय हम नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की गहराई आती है या समझ आती है या विवेक जागृत होता है, तब उन बातों को हम समझ पाते हैं। बहुत ऐसी बातें, जैसे हम जब कलकत्ता में आए, एकदम कॉलेज से सीधा आए, एक सेकंड में हमारा समर्पण हुआ, एक सेकंड में, वो भी लंबी कहानी है। लेकिन जैसे ही मधुबन, कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई क्लासें, हमने कहा ना दीदी दादियां बड़ी बहनें आती थी वही हमारी ट्रेनिंग है और कुछ नहीं। अब कलकत्ता में आए, अब कलकत्ता में दीदी ने कहा ट्रेनिंग कराओ, ट्रेनिंग की नहीं है, ट्रेनिंग कराने की ड्यूटी मिली हमारी, बंगाल बिहार उड़ीसा आसाम और दो अफ्रीका की बहनें थी, ट्रेनिंग कराई, उस ट्रेनिंग में अपनी ट्रेनिंग हो गई, मुरली सुनाना अच्छा लगता था। हमने कहा दीदी एक महावाक्य हम मुरली से नहीं पढ़ेंगे, आते ना अमृत वेले उठो योग करो, हम तो अमृत वेले उठ ही नहीं सकते हैं। और हंसा के कहते दीदी शाम को 4 बजे योग करेंगे, वो अमेरिका का टाइम होगा, वो भी अमृत वेला होगा, तो उस तरह से हम योग कर लेंगे। तो दीदी भी बोलते नहीं बाबा का महावाक्य कट नहीं करना है, बोलने से बल मिलता है। ये है कितना छोटा सा महावाक्य है दीदी, बस बोलने, बाबा का महावाक्य बोलोगे बोलने से बल मिलता है, अतः तुम पढ़ो, अपने आप आत्मा जाग गई है, उसको जगाने की जरूरत नहीं। तो कितने छोटे से महावाक्य है, लेकिन वो दिन और आज का दिन है, कभी मैंने अलार्म लगा के नहीं सोई हूं, बाबा को जब जगाना होगा ये कह के बाबा उठा देगा। और आज भी 2:30 बजे हो चाहे कोई भी टाइम हो, तो जब 2:30 बजे उठते थे तो मम्मा को याद करते थे, सबके साथ याद करते थे, तो अपना मधुबन याद कर लेते, थोड़ा लेट होते तो भगत को याद कर लेते, मैंने आज भगत बन गए 5 बज गया, वो तो 5 बजे जाते। तो बाबा के उन महावाक्यों से अपने आप को क्या करते तैयार, कि बाबा ने जो कहा आत्मा जग गई, अब जागने की जरूरत नहीं। तो ऐसे बाबा के महावाक्यों नहीं, दीदी के, निर्मल शांता दीदी के उन महावाक्यों ने हमको बहुत सहज और सरल रीति से धीरे धीरे अनुभव कराते रहे। और आज बाबा के जो और बच्चे आते हैं उनको भी हम कहते हैं मेहनत नहीं करो। बाबा मुरलियों में क्या कहता है, मेहनत से मुक्त होकर बाबा से वरदानों का अनुभव करो। ये युग वरदानों का युग है। वरदान उसको कहा जाता है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमको तो आज 50 साल में एक बार भी ये संकल्प नहीं आया क्यों ज्ञान में आ गए। बाबा ने कुछ मदद तो की नहीं, किसी भी भाई बहन कौन क्या कैसा पार्ट बजा रहा है, सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं। शुरू में आता था तो कोई कोई जब नई नई बहनें ट्रेनिंग में थी तो हमको दीदी कहती थी, दीदी मैं कहा दीदी ये ज्ञान में क्यों आए हैं जब उनको अच्छी तरह से चलना ही नहीं है। तब दीदी कहती राजधानी बन रही है। अब हमको ये भी नहीं मालूम राजधानी क्या बन रही है, नए थे। अब समझ में आए राजधानी में तो सब प्रकार के बाबा के बच्चे होंगे ना, जो भी पार्ट वो बजा रहे हैं वो अपनी संतुष्टि से ठीक ही पार्ट बजा रहे हैं। जब आप उस दृष्टि से देखेंगे और उसी भावना से देखेंगे, फिर भी जैसे बाबा को सिखाना पड़ता है, मुरली में सिखाते ना बच्चों का पार्ट फिक्स है, फिर भी बाबा शिक्षा भी देता है, शक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है, पढ़ाता भी है, करना तो हमें है। तो उस रूप से अगर आप किसी फील्ड में जो पार्ट आपको मिला है, कोई भी पार्ट मिला है, आपको बताना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, लेकिन अनुभव क्या कहता है, वह आत्मा जितनी उसकी शक्ति होगी उतना ही वो पार्ट बजाएगी। हमको याद है निर्मल शांता दीदी ऊपर इंद्रप्रस्थ में और जानकी दादी रहती थी। जानकी दादी के पास जाने से थोड़ा डर लगता था, उससे बहुत हिस्ट्री क्लास कराते थे ना, तो हम लोग कहते शीशे के आगे नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, तो डर लगता था। लेकिन जब उनके साथ मैंने आसाम का टूर किया, दीदी के पास जाते थे तो पास में बुला के जो बातें सुनाती थी, अपना जो संकोच डर तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जो फीलिंग थी संकोच की वो दूर हुई। तो दादी की विशेषता क्या देखी अभी जानकी दादी की, वो मनन करते हुए जो ज्ञान का मनन हम लोगों को पास में बुला के सुनाती थी वो बहुत गहराई वाली पॉइंट होती थी। जैसे मुझे वो दशरथ भी याद है, शांति स्तंभ भी याद है, दादी का बातें भी याद है। दो तीन बहनें थीं, उन्होंने दादी योग क्या होता है, आपके से तो बाबा बाबा बहुत निकलता, हमारे मुख से नहीं निकलता है। दादी हर बात है ना प्यारा बाबा, मैं कहा दादियों ने बाबा की पालना ली है, उनके साथ रहे हैं, हम लोग तो रहे नहीं, लेकिन दिल से नहीं निकलता है। जब आई गए बाबा के बनी गए तो जैसे आपके मुख से मन से निकलता है हमारे भी होना चाहिए, ऐसा भाव आता था। तो दादी मेरी कोई बात नहीं, उसकी भी चिंता नहीं करो, समय आएगा अपने आप हो जाएगा। और फिर बोला योग क्या है, बैठते तो हैं, दादी का एक्यूरेट कर्म करना ही योग है। तो बताओ एक्यूरेट कर्म क्या है, उसकी भी गहराई सुनी, बहुत बातें हैं उनका बताया। देखो विश्व रतन दादा एकदम एक्यूरेट काम करता है, जिस कर्म को हम करते हैं उस कर्म को अगर हमें ड्यूटी में दूसरे का संकल्प भी ना चले, परफेक्ट होकर हमें वो काम मिल जाए। समझ में, ये बहुत गहराई वाली पॉइंट है कि कोई भी काम चाहे टेबल ठीक करने का मिलाइए, वो इतना एक्यूरेट करता है कि हमें संकल्प कि इसने ये रखा कि नहीं रखा, करा कि नहीं करा। तो सब दादियों का ये काम देगा। हम निर्मल शांता दीदी का ही देखते थे कि 9 बजे उस समय कलकत्ता में साइरन बजता था, तो दीदी कहती सब घड़ी चेक करो। मैं क्या चेक करें, तो देखो सब घड़ी में 9 बजाए कि नहीं बजाए। फिर भी हम 4 करते तो एक खत्म, एक नहीं करेंगे 2 नहीं करेंगे तो एक्यूरेट तो नहीं हुए ना। तो दीदी बोलती नहीं थी, देखो हम लोग 21 साल के, दीदी की उम्र 60 क्रॉस कर गई थी, दीदी स्टूल लेके खड़े होकर अपने आप घड़ी ठीक करने लगती थी। तो करके कर्म सिखाया। अब ये अनुभव याद आता है कि कैसे छोटी छोटी बातें हम लोग देखते थे, बाबा ने हमें स्वच्छता सिखाई, सफाई सिखाई। कोई भी रूम होता था ना तो साइड में किनारों में नहीं गंदगी हो जाती है थोड़ा काला, ये कहते अच्छा पोछा लाना विम लाना, ये नहीं कहते इसको कर दो नहीं। मैं कहा क्या करना है दीदी, बोले देखो किनारे थोड़े ऐसे है ना ठीक करना है, टेबल है हमने ऊपर से साफ कर दी, देखो नीचे से भी क्या है पाउडर लगा हुआ है, ये नहीं कहती थी गंदगी लगी हुई है। ऐसी मैंने रतन मुनि दादी के पास ऑफिस में एक बार गई थी, कोई बहन सफाई कर रही थी, कि मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अनुभव की बातें क्यों सुना रही हूँ, कितनी दादियों ने केवल ज्ञान ही नहीं सुनाया। तो एक बहन गंदे कपड़े से टेबल पोछने लगी, बहुत पुरानी बात है, लेकिन दादी बोली देखो गंदे कपड़े से साफ टेबल कैसे होगी, है तो बहुत छोटी सी बात। कोई कह नहीं दीदी देखने में काला साफ हो, नहीं सफाई कपड़े से करो। ये अनुभव क्या सिखाता है कि अगर हम खुद गंदे हैं तो दूसरे को शिक्षा देकर हम उसकी क्या सफाई करेंगे, उसको क्या सिखाएंगे। ऐसी हम योगी नहीं है, योग करो योग करो, हम योग नहीं करेंगे तो दूसरे को योग क्या सिखाएंगे। तो बाबा ने जैसे अपने आप को संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करते करते सब बच्चों को 14 साल पालना, दीदी दादियों को पालना, कर्म करके दिखाया। जैसे दादियों को आप सबको देखते हैं एक नाम बाबा को हमने भी देखा, सब्जियां धनिया पौधिनों नहीं साफ होता था या जो भी है, तो बाबा क्या देख उसको वेस्ट नहीं करो, बिल्कुल बाबा खुद बैठते थे। दीदी दादियां एक चावल भी हमारा अगर सफाई करते हुए उसमें नहीं होता है, गिर जाता है तो दीदी कहते 1,00,000 रुपया तुमने गंवा दिया। 1,00,000 रुपया कहाँ से, एक दाना ही तो चावल का गिरा है, लेकिन एक दाना भी नहीं गिरना चाहिए। आज हम देखते हैं बाबा के बच्चे अपने सेंटर्स पर मधुबन में आते हैं, बाबा का अन्न कितना प्यार से बाबा के बच्चे थोड़ा थोड़ा अपना भाग्य बनाने के लिए सेवा में सफल करते हैं, लेकिन बाबा का प्रसाद कैसे खाना चाहिए, प्रसाद है। हमारे अंदर बचपन में पूजा नहीं की, लेकिन देखा कलकत्ता में माताएं थोड़ा सा कना दाना जरा लड्डू भी दाना गिर गया उसको सारा उठा के हाथ में रखे उसको फेंकेंगे नहीं, उसको भी खा लेंगे। हम बाबा के बच्चे कई बार ना समझ होने के कारण बाबा के अन्न का भी क्या कर देते हैं, मैं शिक्षा के रूप में नहीं कहती लेकिन प्रैक्टिकल जब देखते हैं तो निरादर कर देते हैं, उसका वेस्ट कर देते हैं। कोई सेवा करके भाग्य बनाए और हम उसको फेंक कर या बचा कर जो वेस्टेज कर देते हैं वो भी ना करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने तो दीदी दादी क्या वैसे ही सीखा है। और चेचाई तर्क के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें अन्न का कभी भी बाबा के भोजन का कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दादियों से हरेक को देखा, संती दादी थी बाबा के यज्ञ के सारी संभाल की, जो आज हमारी मुन्नी बहन सारा यज्ञ संभाल रही हैं, ऐसे संती दादी कोलकाता में रहें। आप सबको ये नाज होना चाहिए ईस्टर्न जोन को, ये 7 दादियां हमारे ईस्टर्न जोन में रहीं, आप सबने पालना उन दादियों की ली है, आज उनकी पालना ली हुई हम सभी बड़ी बहनें जो आज भी हैं। कल भी आपने राज बहन उनको देखा, रानी बहन, कमलेश बहन, अब एडवांस पार्टी में हमारा पार्ट बजाया, जितनी भी बहनें नीलम बहन उड़ीसा में, कलकत्ता में भी हमारी बहुत बहनें, सब साकार बाबा की बहुत सारी बहनें, 20-25 बहनें होंगी जिन्होंने बाबा की पालना ली। 6 सरदारियां, 2 दादियां कलकत्ता में रहती थी, 2 दादियां पटना में रहती थी, 2 संदेशी दादी वगैरह भुवनेश्वर हैं। तो ऐसी दादियों के आपके पूर्वज हैं, वंशज हैं, उनको भले नहीं देखा लेकिन उनके निमित्त पालना लेने वाली आत्माओं से आपने पालना ली है। तो हम सबको अभी भी रोज देखो दादी का, अभी भी मैं बैठी थी, गुलजार दादी की क्लास चल रही थी यहाँ पर, कहीं भी क्लास चल रही हैं, दादियों की क्लास हैं, किताबें हैं, उनके अनुभव हैं, रोज भी अगर आप 1 या 2 को सुनकर मनन में ले आओ, जैसे ना अच्छा खाना खाते तो कहते अच्छे फ्रूट तो हम एक दूसरे को देख के खाना सीख ही जाते हैं ना, हेल्थ के लिए हर कोई सीख जाता है सहज रीति से। ऐसी दीदी दादियों के वरदानी बोल के किताबें, बाबा की साकार और अव्यक्त मूल्यों के महावाक्य, कोई भी एक चाहे ब्लेसिंग ही उठा के पढ़ो, ब्लेसिंग भी वही है, उसको एक सुबह सुबह अवश्य अपना आधार बना लो। मुरली में भी बहुत कुछ है, वो बाद में 7 बजे सुनेंगे, जब उठते एक वरदान स्लोगन कुछ भी, सुबह सुबह उठ के कुछ खाते हैं ना, ऐसे मन को अगर अपना चिंतन नहीं चलता है कि आज बाबा मुझे क्या काम देगा, आज बाबा मुझे क्या वरदान देगा, आज बाबा मुझे क्या काम देगा। काम भी सोचो बाबा, आज ऐसा ब्लेसिंग आना चाहिए। तो वो ब्लेसिंग जब आता है तो आपको सारा दिन उस पर अटेंशन। बाबा ने जो ब्लेसिंग दिया, देखो आज वही काम हो गया। बाबा के तो अनुभव की क्या बात बताएं। अभी कलकत्ता में जैसे रिट्रीट बन रहा था, अब बाबा का एक मुरली का महावाक्य मैं कई बार सुनाती कि बहुत समय का किया हुआ अभ्यास समय पर काम आएगा, जिसको बाबा ड्रिल कहते हैं, एक सेकंड की बात कहते हैं। लेकिन वो एक सेकंड में बाबा का जो अनुभव होगा, उस अनुभव के ऊपर बाबा ने कई मुरलियों में इतना भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान और दुखी है, अगर डॉक्टर उसको एक सेकंड का इंजेक्शन लगा देता है तो उस दुख को भूल जाता है। कर देता ना एक सेकंड का डेड साइलेंस। ऐसे ही हम सभी, कभी कोई परिस्थिति आएंगी, कोई परीक्षाएं आएंगी, कोई कुछ भी आ सकता है, विघ्न आएगा, उस समय एक सेकंड की लाइन बाबा के साथ अगर क्लियर हो गई तो आपकी एकदम टचिंग क्लीन और क्लियर लाइन से होगी कि ये करना है। मेरा ख्याल सबको अनुभव होगा, है अनुभव ऐसा? अगर कोई कहे आप अपना ऐसा अनुभव सुनाओ तो सोचना नहीं पड़े क्या अनुभव सुनाए, हुआ कि नहीं। इसका मतलब वह अनुभव भी तभी होगा तो पहला अंदर से बाबा से अटूट दिल का सच्चा प्यार। जो भी है, जैसे भी है, अच्छे हैं या बुरे, बाबा के सामने क्लियर हूं, क्लियर। बाबा आप आपको जाने, हम अपने आप को जो जानते हैं, बाबा से भी जाने, हम अपने आप को जो जानते हैं, जो हम पहचानते हैं, जो हमारा विवेक समझता है, उस अनुसार से बाबा के आगे संपूर्ण समर्पण, इसके लिए लाइन। उसके बाद समर्पण के जो बाबा कहे उसके लिए क्या रेस्पेक्ट रिगार्ड से करने के लिए मन से हाजी का पार्ट करने के लिए तैयार। फिर करण करावन करा रहे हैं, हम करेंगे, हम करने वाले तो है नहीं, इंस्ट्रूमेंट है, अवश्य बाबा करेगा, चिंता की कोई बात ही नहीं। बहुत एक एक सेकंड के ऐसे अनुभव आए हैं इस अलौकिक जीवन में कि हम तो कई बार सुनाए हैं, पता नहीं मैंने यहाँ सुनाया कि जब मैं नंद गई थी मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि बहुत सारी टोलियां बनाई हैं एक जैसे, और वहां जाकर एयरपोर्ट वो सब खोलेंगे देखेंगे, तो मैं कहा हमारे पवित्र हाथों का बने का क्या वैल्यू, ये तो खाने वाने वाले सब हाथ लगाएंगे। ये मेरा ही संकल्प था, मेरे साथ तो 5-6 जने थे और मैं एक साइड में खड़ी होकर सोच ही रही थी। और जैसे बाबा मुरली में कहते हैं बच्चों ने यार प्यार के पत्र दिए हैं, लेकिन पत्र पहुंचने से पहले ही बच्चों ने जिस सेकंड याद किया वो पहुंच जाता है। आज और कल की मुनि ना रॉकेट इतना तेज है आत्मा का, सोच नहीं सकते ना आप। सोचिए सोचने से पहले ही, जैसे सोच ही रही थी खड़ी अकेली, तुरंत एक बहन आई कि आपका बैग पेन है, मैं कहा नहीं, और ऐसे करके ऐसे जाना, तो उसने सारा हमारी गाड़ी वाड़ी प्रबंध करके बेल्ट वेल्ट खोल के आप अकेले, मैं कहा नहीं, वहां 6 खड़े हुए हैं सामने, 1 घंटे क्या 10 मिनट में सब पहुंचा दिया, कोई बैग बैगेज नहीं खोला, तो कमाल किसकी, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की बाबा के प्रति किया। अब वो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति का 1 घंटा पहले आ गए, हमारी तो गाड़ी जैसी जयंती बहन कहती अरे कैसे पहुंच गए। ऐसी एक माता आई, उसका भी अनुभव में जो आती है मेरे पास, कलकत्ता की एक माता थी, बड़ी सब बाबा को पत्र डालते हैं ना घर सेंटरों में भी डालते हैं, यहाँ भी लिख के, तो एक माता दूसरी माता को बोलती है मैं कैसे पत्र लिखूं, मुझे तो कुछ भी लिखना नहीं आता। दूसरी माता ने उसको सिखाया तुम एक एक लाइन लिखती जाना, लाइन लगाती जाना, लिखना लिखना तो आता नहीं, बाबा को बोलना लाइन, फिर बाबा कुछ बोलना लाइन, बस वो तुम्हारा पत्र हो गया, लपेट के बाबा के कमरे में दे देना। अब सुना, खगर से राइटिंग अक्षरों में नहीं लिखा, वो मेरे रूम में आके कलकत्ता में कहते दीदी वो बहन ने बोला, मैंने ऐसे लाइन लगा लगा के वो पत्र लपेट के बाबा के में डाल दिया। मैंने कुछ लिखना था, मैंने दो बातें थी, मेरी प्रॉब्लम थी, मैं यहाँ आई कलकत्ता, मेरे दोनों काम पूरे हो गए, बाबा ने मेरा पत्र अच्छे से पढ़ लिया। आप सोचो, और आज भी वो सेवा करने बहुत प्यास से आती, उसके बहुत सारे अनुभव है। अब इन माताओं से हमें सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि प्यार और स्नेह की शक्ति जो भक्ति में कहते थे अनपढ़ों को पढ़ाता है। बहुत माताएं हैं जिनको ना बंगला आती थी, ना हिंदी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, बब्बे पत्र पढ़ के सुना, मुरली सुनाती थी। जब बब्बे थक गई, अब कौन मुरली सुनाएगा? बाबा को ही बोलेंगे, बाबा मुरली मैं तो पढ़ नहीं सकती हूँ। वो माता होगी 70 से ऊपर की, इतने दीदी मैं मुरली लेके ऐसे बैठ जाती थी और मुझे मेरे बाबा ने पढ़ना सिखा दिया, वो मुरली पढ़ना सीख गई, मैं विश्वास नहीं हुआ मुझे, कहते जल्दी थोड़ी विश्वास होता है ऐसी बातों पर। मैं कहा आओ, उसने पढ़ कर क्लास में सुनाओ, वो पढ़ना सीख गई। आप सोच सकते हैं, डेनिस बहन है, पहले इंग्लिश ही जानती थी, आज हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं। जो कहते हैं कि हम कैसे सुने बोल सकते हैं, ये अनुभव है। तो इस संगमिक पर कल्प के अंत के समय जो बाबा दिखाई नहीं देता इन स्थूल नेत्रों से, जिसको देख नहीं सकते, सामने ब्रह्मा बाबा में आने के बाद भी समझ नहीं सकते थे बहुत लोग, और आज भी हम सभी कोई साक्षात्कार नहीं किए, लेकिन बाबा कहते मैं अपना काम बच्चों से करा लेता हूं, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए? धीरज चाहिए थोड़ा। और बाबा तुरंत नहीं करता है काम, कई बार एक बार आपने बहुत बाबा को याद किया, बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत सुनाया, कभी तो एक सेकंड में कर देगा, कभी कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी सोचा इस पर? कई काम के लिए तुरंत कहेंगे हो जाए, कोई काम कितना बोलो नहीं होता। बाबा उसके लिए वेट एंड सी कहता है ना कई मुरली में, उसके आगे कुछ और काम तुरंत जो हम अभी चाहते हैं वो करने का नहीं है, उसमें अभी आपका फायदा नहीं है, वो हम नहीं जानते। समझ में आई ये बात? ये उसके हम चाहते हैं ये काम तुरंत हो जाए, लेकिन उसमें फायदा ही नहीं है हमारा, बाबा और फायदा कराना चाहता है। उत्तर ही नहीं मिलता, कितनी बार सोचो बिल्कुल नहीं मिलता। तो उस समय याद आता है कि हमारा काम नहीं है, हम कराना भी चाहते हैं, बाबा का काम है, बाबा का कार्य, कब और कैसे कराएगा वो जानता है। आज बहुत कलकत्ता में बड़े बड़े मेले हुए, जिनको मालूम होगा हम 75 में आए, 82 में बड़ा मेला हुआ, दो दो तीन तीन बहुत, और जब हम आए थे तब कम्युनिस्ट पार्टी थी, हम लेटर में शिव बाबा का सिंबल भी नहीं लगा सकते थे, ऐसा हमारा पर्चा फेंक देते थे निमंत्रण के लिए। गॉड में विश्वास ही नहीं करते, गॉड भी नहीं लिख सकते थे, गॉड फादर भी नहीं, पहले तो त्रिमूर्ति का सिंबल का लेटर हेड होता था। लेकिन उस समय भी बड़े मेले हुए, 82 में भी हुआ, 82 के बाद हम बस बाबा दिखा रहा है विक्टोरिया के आगे जो बड़ा प्रोग्राम होना है, कैसे होना है मालूम नहीं, लेकिन वो बाबा का दिखाना विद इन, मतलब ट्रैफिक पुलिस हमको रोकती थी, बहन जी एक 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का दिन है, ठंडी का सीजन है, 26 जनवरी आपका कैसे मेला होगा? बस बाबा दिखा रहा है झंडा वहाँ विक्टोरिया के आगे, बाबा विक्टोरिया में घूमता था। हम खानी बस लाल किला की रेड फोर्ट की सुना देते थे ना ब्रेजनेव का, बस इन फ्रंट ऑफ विक्टोरिया वी विल डू द फेयर, बस इतना एक सेंटेंस बोलते थे। आप देखिए कोई एक व्यक्ति दिल्ली से, एक बुजुर्ग माता ट्रांसफर होके आई, उसका बेटा वहाँ फोर्ट विलियम में बड़ी पोस्ट पर था कर्नल, उसने सारा काम कर दिया, ब्रिगेड परेड के परेड ग्राउंड लिख दिया सारा काम, और जब तक हम नाप रहे हैं, मैं लंबा कहानी पर आया विक्टोरिया, बस हमने कहा यहाँ तक हमें दे दो, हमने खुद ड्राइंग बनाई और वो आज तक कागज रखा बाबा का मेला, सारे कार्ड पर्चे सब कुछ छप गए थे, सब दादियां आ गई, जगदीश भाई आ गए, भाई कलकत्ता में क्या हुआ, जैसे सारी थाली तैयार है, भोजन तैयार है, थाली खिसक गई, तो ऐसे समय में किसने मदद, बाबा नहीं चाहता था जो हमारा पहले जगह में प्रोग्राम होना था जो कैंसिल हो गए विक्टोरिया के आगे हुआ। तो यहाँ क्या वेट एंड सी, सारी मेहनत की लेकिन करना दूसरी जगह था। तो वो भी अनुभव याद आता है कि हम कई बार बाबा के महावाक्यों को समझ नहीं आते, लेकिन एक एक बाबा का ही कमरा बनता रहा रीति कर, वो तो बार बार हंसी भी आती है अपने पर। जब बाबा के हॉल में जो हमारा सिंपल सा बाबा का ही लिया हुआ 1968 का सेंटर है एल्गिन रोड, जब कुर्सी पर बैठो बाबा का कमरा इतना बड़ा बन रहा है, क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं? रोज मैं अच्छा सर्कल में खड़े हो इतना बड़ा होगा, ये तो क्लासरूम से भी, ये बाबा का कमरा। एक महीना क्या दो महीना सबसे ज्यादा मेहनत बार बार, बस क्यों बन रहा है, इतना बड़ा नहीं बनाना है। आखिर जब हमने उसका सारा आरके छोटा कह दिया अपने हिसाब से, सारा काम हो गया। फिर मैं कहा नहीं, बाबा का कमरा तो बनने में टाइम लगेगा। लास्ट ईयर सोचा ऐसी जहाँ बन गया था, मैंने सबके चारों तरफ ऐसे देख रहे, चलो सबसे पहले बाबा तो कुटिया में ही रहता था, माउंट आबू में पत्र वहीं बाबा लिखते थे, कुटिया बनाते हैं बस। वो स्थान देखा जैसे टचिंग हुई, एक भाई आया कहाँ से बड़े प्यासे से, मैं 18 जनवरी में वो कुटिया बना देगा। बस 18 जनवरी पर बाबा की कुटिया बन गई और उद्घाटन हो गया। तो टचिंग किसने की, सबको मालूम है 18 एक महीने में बनना कोई सहज बात नहीं है वहां पर, लेकिन एक बस इसी दृष्टि में बनाना और कुछ समझ नहीं, बाबा की कुटिया बनेगी। तो यहाँ और बाबा पर विश्वास ही नहीं, निश्चय बढ़ता है, निश्चय आता है कि करण करावनहार हमें करना है, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी कभी फ्री छोड़ना है, एकदम फ्री। मैं कर रही हूं नहीं, बाबा क्या कराना चाहते हो आप बताओ, हम तैयार हैं। विघ्न भी आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी, परिस्थिति भी आएंगी, बाबा आपको अपनी सेवा के लिए जो भी जिस समय कराना है हम उसके लिए तैयार हैं। अब बाबा इतना जानता है हर आत्मा में क्या शक्ति है, क्या गुण है, क्या विशेषताएं, क्या कलाएं हैं, अपने अंदर से उसको समर्पण समझो। क्या विशेषताएं हमारे पास कलकत्ता में, ऐसे ऐसे कोई पूरा जोन से हेल्प नहीं, कोई सेंटर से, अपने आप करो सब, हाँ जी, लेकिन एक ही सेंटर से चाहे टाइम लगा, हमें टाइम लगे आराम से करेंगे, जब बाबा पूरा करेगा। वो कहते शायद हम लोग काम करना नहीं जानते, हम लोग नहीं काम करने की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा है, बाबा बनवा रहा है, ठीक है, लेकिन भीड़ नहीं लगानी है, सिंपल तरीके से योग तपस्या करनी है। अभी जयंती बहन और मृत्युंजय भाई जाकर ओपनिंग करके आए, तो उस ओपनिंग में सिंपल सिटी से बाबा के घर में योग तपस्या का तुरंत टीचर्स की ट्रेनिंग करी, तो सब हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहनें जो सब आई, इतनी अच्छी टीचर्स की ट्रेनिंग, जो पहला अनुभव है कि इतने बड़े प्रोग्राम में मैं निश्चिंत रात को 3:30 बजे तक निरसंकल्प सोई हूँ तीनों चारों दिन, और ठीक ग्राउंड में जाके बैठ सकी, तो बाबा को थैंक्स। मैंने कहा नहीं तो हो जाता है, काम करते तो नहीं, ये अनुभव होते हैं, ये अनुभव है, ये अनुभव की अथॉरिटी बाबा हम लोगों को करा देता कि आप अथॉरिटी हो, बाबा करा रहा है। और कभी कभी बाबा बिल्कुल नहीं, जब हम अपनी बुद्धि चलाते ना, ऐसा करें वैसा करें, अब छोड़ दो, छोड़ देना। हम दीदी को देखते थे, निर्मल शांता दीदी एकदम निश्चित, जैसे कोई चिंता ही नहीं। कोई कोई तो कह रहे दीदी कैसा है एडमिनिस्ट्रेशन करती, कोई चिंता ही, मैं ये मेरे को सुनने को मिलता था, क्या है दीदी को लिए बोल देते हैं, दीदी क्यों चिंता करेंगे, हमारी सौभाग्य बहन बहुत हंसती थी, अरे दीदी तो राजा है, साकार बाबा की लड़की है, वो तो निश्चिंत सोएंगी ना मीटिंग में, उनको क्यों बोलते हो। और दीदी निश्चिंत आराम से, अरे ऐसे थोड़ी निश्चिंत, कभी चेहरे पर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, प्रोग्राम होते थे, कभी नहीं उनको देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा, 40 साल कभी नहीं देखा, निश्चिंत एक रस अवस्था। जब स्लोगन वरदान पढ़ते थे तो लगता था सारे स्लोगन वरदान तो उन्हीं के ऊपर आ रहे हैं। संती दादी कभी ऊंची आवाज ही नहीं सुनी, दोनों एक ही रूम में हम लोग साथ ही तो रहते थे, बिल्कुल नहीं, दादी की तो विशेषता क्या देखी, एक और सिंपल सी बात है, जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो दादियां सिंधी होती थी, तो बहुतों को लगता था सिंधी दादियां सिंधी बाबा के बच्चों को ही ध्यान देती होंगी। और हम कलकत्ता में बहुत सारी बहनें, तो सेवा करने वाली बहनें भी कहती है, सिंधी भाई आता था, दादी कहती है चलो थोड़ा उसको टोली या प्रसाद उसको दे दो, तो एक बहन कहती है हाँ सिंधी भाई है, सिंधी को दादी दे रही हो। मैं सुनती रहती थी, बोलती तो नहीं थी मगर ठीक है। फिर मैंने कहा दादी एक बहन ऐसे बोलती है, बोला हम अपना धर्म थोड़ी छोड़ देंगे, कोई कुछ भी बोले, उसको मालूम नहीं इनकी मदर बाबा के यज्ञ में कितनी सेवा करती है, वो अकेला यहाँ आया होटल में रहा, तो अगर उसे थोड़ा भेज दिया तो कुछ हर्जा नहीं है। अब ये तो सिंधी भाई था, ठीक है सोच आ गया। फिर एक भाई बहुत सेवा करता था, सब साधारण भाई, वो बाबा के घर से ही उसको नाश्ता दिया जाता था, और डाइनिंग टेबल पे एक डिब्बा रखा हुआ था। संती दादी कुछ बोल चक्कर लगा के उसका डिब्बा खोला, देखा, मैं तो खड़ी होती थी, कहते देखो वो भाई जाएगा, कैसे पैकिंग किया है बेचारा, जब तक जाएगा उसकी तो रोटी सब्जी सब अपने हाथ से सारा ठीक ठाक किया। तो मैं कहा वो तो सिंधी भाई नहीं था, बहनों को भी बोलती उसका बहुत, दादी ने कितना ध्यान दिया। ट्रैफिक कंट्रोल के बाद 9:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, 10 बजे जितनी सिंपल कन्याएं होती थी, एकदम साधारण कन्या, उनके साथ बैठ के सारी मुरली रिवाइज करती थी। वही आज भी कन्या को मालूम होगा, हमारी आज सेंटर इंचार्ज होकर से 11-11 साल की आई थी बहने, वो आज वो सेंटर पर शक्ति इंदु ऐसी बहने बैठी, मुरली रिवाइज कराती थी। और जो इतना धीरे बोलती थी तो हम लोगों को समझ में भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन उनकी पालना, सूक्ष्म पालना, सूक्ष्म पालना जिसको कहते हैं। कोई भाई था बैठा होगा सिकदर भाई, अगर वो कहता दादी ब्रह्मा बाबा कैसा शिव बाबा कैसा, कौन से बाबा को याद करूं, ब्रह्मा को याद करूं या, बोले एक ही तो बाबा को याद करते हैं। अच्छा आप ध्यान में जाती हैं वो सुना के आइए, बोला नहीं कभी नहीं। संतरी दादी की विशेषता ये देखिए, कितना भी योग चल रहा है, हम कहते दादी रेस्ट करिए आपके, बोले नहीं सब बच्चे योग कर रहे हैं, वो कुर्सी पर बैठ के चाहे पाओ ऐसे करके नहीं, एक रस अवस्था देखिए, एक रस। उन्होंने जो शरीर छोड़ा पार्ट चेंज हुआ 18 मतलब दादी ने कहा नहीं तुम भी चलो, मुन्नी बहन भी थी उस समय, दोनों आए माउंट आबू में आए बिल्कुल अमृत वेले 4 बजे एकदम शांति से अपना पार्ट पूरा किया। ऐसा पार्ट पूरा किया जब हम उनसे यहाँ आ गई थी तो मैं कहती थी दादी ये कैसे करे, बोले तुमको सब समझा दिया है ना, कुछ भी पूछे सब समझा, पहले सब सिंधी में हिसाब लिखती, सब मुझको समझा दिया। उनके लौकिक भाई ने पैसा भेजा था जापान से, मैं दादी ये बोले एक ही तो अकाउंट है वहां डाल दो। बहुत प्यार से बाबा का एक चित्र भेजा, ब्रह्मा बाबा का, हमारे एक सेठिया भाई थे, बोले उसको चित्र जरा सोच समझ के, बाबा का फेस अच्छा सा थे, तो बस प्यार से चित्र को बोले उसको ये देना। पालना देने का जो एक होता है ना व्यवहार पालना, वो हमने दादियों का देखा। ये अनुभव ये कहता है कि जो हम अच्छाइयां देख रहे हैं, जो विशेषता देखकर विशेष आत्मा बन जाओ। अभी बहुत भाई बहनों को मैं देखती हूँ, यहाँ अपनी बहनों को सिखाती, देखो रीटी में सेंटर में देखो, मधुबन को देखो, मुन्नी बहन को देखो, कैसे कारोबार चल रहा है, ऑटोमेटिक कराने वाला कर रहे, करने वाला जो कर रहा है वो भी बाबा का काम कर रहा हूँ, निमित होके कर रहे हैं, निरंकारी होकर, जितनी शक्ति है उतना करो, प्यार से करो, शुभ भावना से करो, शुभ कामना से करो, अपने भाई बहनों की सेवा करें। लौकिक भाई बहनों की कैसे सेवा करते हैं आज भी, तो ये भी तो हमारा ईश्वरीय परिवार लौकिक ही समझ लो, अलौकिक नहीं। सूक्ष्म चीज सोचो, उस रूप से जब पालना करते हैं तो उस पालना की शक्ति मिलती है। आज मेरे सचमुच मेरे अंदर पार्ट बाबा जो करा रहा कर रही हूं, शरीर के हिसाब से मेरे अंदर शुरू से ही शक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं। लेकिन क्लास करने के लिए बहनें बोलती हैं, लेकिन मैं नहीं करा पाती हूँ कई बार। लेकिन दादियों के अनुभव से मैं ये कहती हूँ, अपने अंदर श्रेष्ठ कर्म करने की अथॉरिटी आ जाती है, मतलब अथॉरिटी और शक्ति आ जाती है, अनुभव से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, अनेक आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं। दुआओं का मतलब है जिसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, समय पर वो मदद कर देती हैं। दुआएं मांगी नहीं जाती हैं, दुआएं मिलती हैं। जो आज आपने 50 साल 30 साल 40 साल अनेक बाबा के बच्चों की दिल से सेवा की है, पुण्य का काम किया है, वो पुण्य आपका जमा होता है। एक मुरली का महावाक्य याद है, याद करना ही पुण्य जमा करना है, मुरली का शब्द है। पुण्य जमा करना मतलब याद करना, याद क्या, बाबा ने जो श्रीमत दिए, जो कर्म करने के लिए, उसको याद करके करो। याद मतलब कोई आग बंद करके योग करके नहीं, तो याद करके बाबा ने इस समय क्या करना था, कैसे करना था, याद उसको कभी कहा जाता है। और तपस्या जैसी, या तो एक घंटा बाबा की सुबह करो, एक घंटा शाम को कर लो, सारा दिन बाबा की उन शिक्षाओं को याद करके, याद में समझ करके फिर उस कर्म को करो। जैसे लौकिक में नहीं कहते हमारे माँ बाप ने इसको कैसे किया था, उसको याद करते हैं। अच्छा, उसको याद करके हम कर रहे हैं, तो बाबा ने ये काम को कैसे कहा, किस तरह से कहा, वो मुरलियों में समझाया गया है, उसको करो। विघ्न तो आएंगे, परीक्षा, तन मन धन जन का एक मुरली चलती है। मैं बहुत बार सुनाती हूँ, सुनती भी, सुनी हुई याद भी रखती हूँ। बाबा ने कहा तन का रोग आए कर्म योगी होके मुक्त हो जाओ, मन का बाबा आता है, मन का भी आता है, बाबा की याद से हो जाए। एक बार बाबा ने कहा संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो, तो जन का भाग्य भी सबको संतुष्ट करो। तो हम दीदी को बोलते हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं सबके अलग अलग पार्ट संस्कार तो, लेकिन उस मुरली में बाबा ने कहा 95% आत्माएं अगर आपसे संतुष्ट है तो भी 100% ही माना जाएगा, 5% आत्माएं अगर अपने संस्कारों वश आपसे असंतुष्ट है वो संस्कार वश है। एक बार होता है ना, किसी को हम नहीं कर पाते जैसा वो चाहते नहीं, लेकिन अपने आप से असंतुष्ट नहीं हो जाओ कि वो तो बेचारे को हम संतुष्ट नहीं कर पाते, तो अपने आप से भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपने आप से भी परेशान नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा 63 जन्म के भी तो छोटे मोटे हिसाब किताब भूले की हैं, कमियां की हैं, क्या क्या किया होगा किसी को याद नहीं है, वो हिसाब किताब लास्ट में इस जन्म में क्या आएंगे, छुट्टी लेने आएंगे कि नहीं आएंगे, सबके पास आएंगे। सबको देखा, मम्मा को देखा, बाबा को देखा, दादियों को देखा, तो वो जब छुट्टी लेने आते हैं ना तो उसे खुशी खुशी विदाई दो, कोई आता है उसको बैठा नहीं देना, बीमारी आई अच्छा ठीक है ले लो, कितना दिन देना उनको, तो कोई बुखार बुखार है मेरा कितना दिन रेस्ट कराने कराओ, हम आराम से रेस्ट करेंगे, और क्या सोचे क्या क्यों आ गया बुखार क्यों आ गया। तो अगर किसी की कैंसर की बीमारी सुनते हो तो पहले अपना डर बैठा लेते हो, दीदी तो कहती कैंसर क्या केसर की है, केसर तो ऐसे हंसाती रहती थी, दीदी का हाथ इतना हिलता था तो दीदी कहती देखो मेरा हाथ डांस कर रहा है, कितना अच्छा, दमा होता है तो हंसा के कह देखो चिड़िया बोल रही है मेरे पास, चिड़िया बैठी, तो बीमारी को मनोरंजन बना लिया। तो बीमारी से भी मुक्त होने का क्या साधन है, कि भावना खेल खेल में क्या करो, कि लास्ट जन्म में अच्छा तुम विदाई लेने आई हो, देते हैं तुम्हें भी बधाई, देते जो खिला पिला के क्या करो, बीमारियों से अपने आप को मुक्त कर दो। बीमारियों को क्या खिलाना, ड्राई फ्रूट ही तो खिलाने हैं, अनुभव क्या कहता है ड्राई फ्रूट कौन से हैं, नहीं हमारे रंग बिरंगे क्या है मेडिसिन है। हर मुरली में बाबा ने कहा कि आज से उनको दृष्टि देकर चलो एक ड्राई फ्रूट खाया दो खाया तीन खाया खा के उसे विदाई दे दो, आएंगी विदाई लेने अंत तक, किसी की पहले किसी की बाद। हम कई बार हंसाते थे दीदी ये शरीर पावरफुल है या आत्मा पावरफुल है, कौन पावरफुल है। मैं निर्मला शांता दीदी से तो बहुत क्वेश्चन करती थी, दीदी कहती क्या कानून मंत्री बन गए क्वेश्चन करती रहती हो, पर ना आत्मा पावरफुल बना रहे हैं, जरा शरीर बीमार हो जाए तो आत्मा चाहती है उठना तो उठ भी नहीं सकती है, तो पावरफुल कौन हो गया, कौन हो गया, शरीर ही हो गया ना, कौन हो गया। एक बार नहीं देखते हैं शरीर में कोई भी बीमारी आती है हम उठ सकते हैं, बुखार भी 9900 भी हो जाए तो पड़ गए बिस्तर पर, आत्मा उठना भी चाहे उठ नहीं पाती तो पावरफुल क्यों हो गया शरीर। सब सोच में पड़ गए कौन पावरफुल है, ये क्वेश्चन रहता था। दीदी अभी हमने कहा दीदी बीमार है आज नहीं मिल सकती, और शाम को ठीक मिल लेती थी, तो बोला हम रोइए सीरियली सुबह राजा शाम को फकीर या ऐसे हंसाती थी तो कौन पा। तो मैं हमेशा कह रही ये तो शरीर बड़ा पावरफुल हो गया, कितना भी हम चाहे नहीं उठ सकते। बोले आत्मा क्या अपना हिसाब किताब चुक तू करिए, मन से परेशान नहीं हो। शरीर पावरफुल है वो रेस्ट चाहता है, होता है ना शरीर भी क्या। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी है, गाड़ी भी पावरफुल क्या, ड्राइवर को निकाल देती है, अब मैं खराब हो गई अब क्या करो, थोड़ा इसको ठीक करो। तो अपने शरीर रूपी इंजन से जब हम अपना ठीक से काम नहीं करते ना, तो आत्मा क्या कहती है, तुमने अच्छा मेरे साथ ठीक से काम नहीं किया, अब मैं अपनी पावर दिखाती हूँ। तो उसी रूप से हम देखते हैं अनुभव के आधार से अपने पुरुषार्थ को बाबा के ऊपर संपूर्ण समर्पण करके, अपने बाबा के वरदानों को जो अनुभव हैं मुरली के आधार से उसको प्रैक्टिकल जीवन में करके करेंगे, तो अवश्य ही आपको बाबा की शक्ति का, बाबा के अनुभवों का जरूर अनुभव होगा। अभी भी आप सभी एक सेकंड अपने डीप साइलेंस में जाके याद करो, जितना भी साल आपको ज्ञानी योगी जीवन में हुआ, कोई ऐसा विशेष आपके पास अपना अनुभव हो तो उस अनुभव को याद कर करके खुशी में आओ। खुशी जैसी खुराक ने ये दादी का स्लोगन होता था। अच्छा, ओम शांति।
किनारा मिल गया किनारा।